एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने सच में कई लोगों के सोचने का तरीका बदला है, काम करने का, जीने का। यह है टिमोथी फेरिस की द 4 आवर वर्क वीक।
हाँ, और नाम सुन के ही थोड़ा मतलब शक होता है ना कि हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम, क्या ये मजाक है?
बिल्कुल, ये सवाल मन में आता ही है।
पर देखिए, आज के टाइम में ये शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी सवाल है। वो पारंपरिक 9 से 5 वाली जिंदगी, रोज की भागदौड़, उफ।
हाँ,
बहुत से लोग हैं जो अब इससे मतलब बाहर निकलना चाहते हैं, थोड़ी ज्यादा आजादी चाहते हैं अपनी जिंदगी में।
सही कह रही हैं।
और ये किताब ना इसी सोच को चैलेंज करती है। ये पूछती है, भाई क्या जिंदगी जीने का कोई और शायद बेहतर तरीका हो सकता है? क्या हमें सच में रिटायरमेंट तक इंतजार करना पड़ेगा अपनी पसंद की जिंदगी जीने के लिए, या क्या हम अभी जी सकते हैं?
हाँ, यही तो मेन पॉइंट है। किताब का दावा है कि हाँ, बिल्कुल जी सकते हैं। और ये सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने की बात नहीं है, ये है लाइफस्टाइल डिजाइन के बारे में।
लाइफस्टाइल डिजाइन मतलब
अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से डिजाइन करना, कंट्रोल वापस लेना एक तरह से।
अच्छा, और इस सोच के पीछे जो चेहरा है वो है टिमोथी फेरिस। और जैसा आपने कहा, वो कोई पारंपरिक गुरु या कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर टाइप नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
उन्हें तो एक तरह का ह्यूमन गिनी पिग कहा जा सकता है ना? मतलब वो बनी बनाई सलाहों पर सवाल उठाते हैं, खुद पर प्रयोग करते हैं और फिर बताते हैं कि देखो भाई, ये चीज काम करती है, ये नहीं करती। सिर्फ वही तरीके जो सच में असाधारण रिजल्ट्स देते हैं।
और उनकी अपनी कहानी भी तो बड़ी दिलचस्प है। मतलब इस किताब से पहले उनकी एक कंपनी थी, ब्रेन क्विकन नाम था शायद,
हाँ,
जिसके लिए वो हफ्ते में कोई 80 घंटे से ज्यादा काम करते थे। सोचिए जरा, पैसा तो बहुत था पर वो खुश नहीं थे, सेहत भी खराब हो रही थी। और वहीं से मुझे लगता है उन्हें ये डेक्लिक हुआ कि भाई कुछ कुछ बदलना पड़ेगा।
पढ़ाई तो उन्होंने प्रिंसटन से की है, ईस्ट एशियन स्टडीज में डिग्री है उनके पास, लेकिन उनका असली ज्ञान वो क्लासरूम से कम और अपने इन प्रयोगों से ज्यादा आया है।
बिल्कुल सही। और यही यही चीज उन्हें खास बनाती है, मुझे लगता है। वो सिर्फ बातें नहीं करते, सिद्धांत नहीं बताते, उन्होंने खुद ये सब अपनी जिंदगी में लागू किया है।
जैसे
जैसे अपना बिजनेस ऑटोमेट किया, वर्चुअल असिस्टेंट्स को काम सौंपा, भारत से भी, दूसरे देशों से भी, और फिर वो निकल पड़े दुनिया घूमने, नई चीजें सीखने, और उनका बिजनेस वो पीछे चलता रहा, पैसे कमाता रहा।
वाह,
तो वो सिर्फ इस लाइफस्टाइल डिजाइन के फिलोसोफर नहीं है, वो इसके जीते जागते उदाहरण है, प्रूफ है कि यह मुमकिन है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इस किताब के मूल विचार को। ये किताब असल में है क्या? एक तरह की गाइड है।
हाँ हाँ बिल्कुल, एक प्रैक्टिकल गाइड कह सकते हैं, जो बताती है कि कैसे आप ये जो पारंपरिक करियर का रास्ता है ना, उससे हटकर अपनी जिंदगी में ज्यादा स्वतंत्रता, ज्यादा उद्देश्य ला सकते हैं।
और ये सिर्फ सपने दिखाने वाली किताब नहीं है, मतलब सिर्फ हवाई बातें।
नहीं, यही तो फर्क है। ये सपने देखने के साथ साथ उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए बहुत ही ठोस स्टेप बाय स्टेप तरीके बताती है, एक्शन प्लान देती है।
अच्छा,
और इसका जो सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी विचार है, वो है सफलता की परिभाषा बदलना।
सफलता की परिभाषा कैसे?
फेरिस कहते हैं कि असली अमीरी जो है वो सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है उसमें नहीं है। असली दौलत है आपके पास कितना समय है और कितनी गतिशीलता यानी मोबिलिटी है, कहीं भी आने जाने की आजादी।
समय और मोबिलिटी। हाँ,
और वो एक कॉन्सेप्ट देते हैं सापेक्ष आय का, रिलेटिव इनकम।
सापेक्ष आय, ये क्या चीज है?
10 घंटे काम करके मान लीजिए 50,000 कमा रहा है।
हाँ,
तो वो उस आदमी से ज्यादा अमीर हुआ जो हफ्ते में 80 घंटे खपकर 2 लाख कमा रहा है।
फेरिस के हिसाब से बिल्कुल, क्योंकि पहले वाले के पास अपनी जिंदगी जीने के लिए, उन पैसों को एंजॉय करने के लिए कहीं ज्यादा समय और आजादी है ना?
अरे वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल ही अलग नजरिया है, मतलब पूरी गेम बदल दी।
बिल्कुल। और ये किताब उन सबके लिए है जो अपने मौजूदा सिस्टम से, मतलब 9 से 5 वाले ढर्रे से खुश नहीं हैं, चाहे वो नौकरी करने वाले लोग हों,
हाँ,
या वो बेचारे थके हुए एंटरप्रेन्योर हों जो अपने ही बिजनेस के गुलाम बन गए हैं, या फिर वो कॉलेज के स्टूडेंट जो सोच रहे हैं कि यार जिंदगी में आगे करना क्या है। ये सबको एक नया रास्ता दिखाती है। और इसके लिए वो एक फ्रेमवर्क भी देते हैं, आपने बताया था कुछ DEAL जैसा।
हाँ, DEAL, ये एक एक्रोनिम है 4 अक्षरों का, DEAL। ये पूरी प्रक्रिया को चार स्टेप्स में बांटता है।
ओके, तो ये डीएल क्या, जरा बताइए।
तो डी है डेफिनेशन, मतलब अपनी सोच बदलो, जो पुरानी सीमित करने वाली मान्यताएं हैं उन्हें तोड़ो, नए लक्ष्य सेट करो, अपने डरों का सामना करो और अपने सपनों की जिंदगी की असल कीमत क्या है वो पता लगाओ।
डेफिनेशन। फिर ई।
ई है एलिमिनेशन, यानी फालतू चीजों को, गैर जरूरी कामों को अपनी जिंदगी से हटाओ। टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है अटेंशन मैनेजमेंट। यहाँ 80-20 नियम और पार्किंसन्स लॉ जैसे सिद्धांत काम आते हैं।
एलिमिनेशन, फालतू चीजें हटाओ, ठीक है। फिर ए।
ए है ऑटोमेशन, मतलब ऐसे सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे बिना तुम्हारी कम से कम भागीदारी के साथ काम करें और इनकम जनरेट करें। इसमें वर्चुअल असिस्टेंट को काम सौंपना, एक ऑटोमेटेड बिजनेस खड़ा करना जिसे वो म्यूज कहते हैं, ये सब आता है।
ऑटोमेशन यानी अपने आप चलने वाले सिस्टम्स। और आखिर में एल।
एल है लिबरेशन, यानी आजादी, खासकर भौगोलिक बंधनों से आजादी।
लोकेशन इंडिपेंडेंस।
रिमोट वर्क की व्यवस्था करना, अगर जरूरी हो तो नौकरी छोड़ना और फिर दुनिया घूमना, मिनी रिटायरमेंट लेना, वो सब।
DEAL, डेफिनेशन, एलिमिनेशन, ऑटोमेशन, लिबरेशन, सुनने में तो वाकई क्रांतिकारी लग रहा है।
है तो, चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं इनके। पहला कदम डी, डेफिनेशन। यहाँ फेरस कहते हैं कि हमें समाज ने जो नियम बना दिए हैं ना काम और जिंदगी को लेकर, उन पर सवाल उठाना होगा।
जैसे कौन से नियम?
जैसे ये सोचना कि रिटायरमेंट ही जिंदगी का अल्टीमेट गोल है, या ये कि ज्यादा घंटे काम करना मतलब ज्यादा सफल होना, या ये कि कुछ भी नया करने से पहले किसी की इजाजत लेनी जरूरी है। फेरिस कहते हैं इजाजत मत मांगो, जरूरत पड़े तो बाद में माफी मांग लेना। ये तो बोल्ड है।
और इसी में वो फियर सेटिंग वाला अभ्यास भी आता है ना, वो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा।
हाँ, फियर सेटिंग ये कमाल की चीज है। देखिए, हम अक्सर बड़े बदलाव करने से डरते हैं ना, सोचते हैं अरे यार अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो पता नहीं क्या होगा।
हाँ हाँ बिल्कुल,
सबसे बड़ा डर तो यही होता है। तो फेरिस कहते हैं इस डर को अनदेखा मत करो, उसे लिखो, बैठो और सोचो सबसे बुरा क्या हो सकता है, व्हाट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो। उसे रोकने के लिए तुम अभी क्या क्या कर सकते हो, और अगर भगवान न करे वो सबसे बुरा हो भी गया तो तुम उस नुकसान की भरपाई कैसे करोगे, वापस कैसे आओगे।
मतलब डर को डिफाइन करना, उसको समझना।
बिल्कुल, और जब हम ये करते हैं ना तो अक्सर पता चलता है कि हमारा डर जो है वो असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा था, हवा में था, और जो सबसे बुरी सिचुएशन हम सोच रहे थे वो भी शायद उतनी बुरी नहीं है, या उससे निपटा जा सकता है। ये डर को मैनेज करने का बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। सिर्फ पॉजिटिव सोचो कहने से ज्यादा असरदार।
सही बात है, डर का सामना करना। अच्छा, और फिर वो ड्रीम लाइनिंग क्या है?
ड्रीम लाइनिंग भी एक जबरदस्त एक्सरसाइज है। अपने सपनों को सिर्फ हवा में मत रखो, उनकी असल कीमत निकालो।
असल कीमत मतलब?
मतलब अगर आप चाहते हो कि आप 6 महीने इटली में रहके कुकिंग सीखो या साल भर दुनिया घूमो, तो उसका महीने का खर्चा कितना आएगा, रहना, खाना पीना, घूमना, सब मिला के एकदम सटीक हिसाब लगाओ।
अच्छा,
फेरिस कहते हैं कि जब लोग ये हिसाब लगाते हैं ना तो अक्सर हैरान रह जाते हैं कि उनके सपनों की जिंदगी असल में उनकी सोच से कहीं ज्यादा सस्ती है, ज्यादा पहुंच में है।
हाँ, ये हो सकता है, हम शायद ज्यादा सोच लेते हैं कि अरे इसमें तो करोड़ों लगेंगे।
बिल्कुल, तो ड्रीम लाइनिंग से वो सपने ज्यादा वास्तविक, ज्यादा हासिल करने लायक लगने लगते हैं, एक टारगेट मिल जाता है। तो ये हुआ डेफिनेशन। अब आते हैं ई, एलिमिनेशन पर, फालतू चीजें हटाना।
हाँ, एलिमिनेशन, यहाँ पर मेन हथियार है 80-20 का नियम, पैरेटो प्रिंसिपल।
80-20, ये तो सुना है, मतलब 80% नतीजे 20% कोशिशों से आते हैं। एग्जैक्टली, तो हमें पहचानना है कि हमारे काम में या हमारी जिंदगी में वो कौन से 20% काम या गाहक या गतिविधियां हैं जो हमें 80% रिजल्ट दे रहे हैं, और फिर अपना ज्यादातर ध्यान, अपनी एनर्जी उन्हीं 20% पर लगानी है।
और बाकी 80% का क्या?
बाकी 80% जो कम नतीजे दे रहे हैं या ज्यादा टाइम खा रहे हैं, उन्हें या तो कम करना है या डेलीगेट करना है, या अगर मुमकिन हो तो पूरी तरह हटा ही देना है।
ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा शायद। हम अक्सर बस बिजी रहने में ही लगे रहते हैं।
हाँ, और इसी बिजीनेस पर फेरिस चोट करते हैं। उनका वो कोट याद है, व्यस्त रहना आलस्य का एक रूप है, आलसी सोच और अंधाधुंध कार्रवाई।
हाँ, क्या लाइन है, मतलब सिर्फ दौड़ते रहना बिना ये सोचे कि ये सही दिशा में दौड़ रहे हैं या नहीं, वो आलस है।
बिल्कुल, जरूरी ये नहीं कि आप कितनी चीजें कर रहे हैं, एफिशिएंसी, जरूरी ये है कि आप सही चीजें कर रहे हैं यानी इफेक्टिवनेस, वो 20% वाली चीज है।
और यहीं पर वो पार्किंसंस का नियम भी आता है ना?
हाँ, पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि कोई भी काम पूरा होने में उतना ही समय लेता है जितना समय उसके लिए दिया जाता है।
मतलब
अगर आप किसी रिपोर्ट के लिए खुद को एक हफ्ता देते हैं तो वो एक हफ्ते में ही पूरी होगी, लेकिन अगर आप उसी रिपोर्ट के लिए सिर्फ 2 दिन की डेडलाइन रखते हैं तो हो सकता है वो 2 दिन में ही हो जाए। काम फैल जाता है दिए गए समय के हिसाब से।
अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि हमें अपने कामों के लिए छोटी और थोड़ी सख्त डेडलाइन रखनी चाहिए।
हाँ बिल्कुल, इससे हम ज्यादा फोकस होकर ज्यादा तेजी से काम निपटाते हैं, टालमटोल कम होती है।
और एक और चीज थी एलिमिनेशन में, वो लो इन्फॉर्मेशन डाइट, ये क्या था?
लो इन्फॉर्मेशन डाइट मतलब गैर जरूरी जानकारी का उपयोग कम करना, जैसे लगातार न्यूज चैनल देखते रहना, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते रहना।
ओह, ये तो आजकल सबकी आदत है।
हाँ, फेरिस कहते हैं कि ये सब हमारा बहुत सारा समय और मेंटल एनर्जी खा जाता है बिना हमें कुछ खास दिए। वो सिलेक्टिव इग्नोरेंस की बात करते हैं, यानी जानबूझकर कुछ चीजों को नजरअंदाज करना सीखें।
ये थोड़ा रेडिकल लग सकता है कई लोगों को, पर सोचने वाली बात है, कितना समय बच सकता है अगर हम ये सब काम कर दें।
बिल्कुल, तो ये हुआ एलिमिनेशन। अब आते हैं ए, ऑटोमेशन पर,
सिस्टम बनाना।
हाँ, ऑटोमेशन, इसमें वो वर्चुअल असिस्टेंट वाली बात थी, VA।
हाँ, मतलब अपने छोटे मोटे टाइम लेने वाले काम किसी और को सौंप देना, किसी ऐसे को जो वो काम आपसे बेहतर या कम से कम आपसे सस्ता कर सके। अक्सर ये लोग दूसरे देशों में होते हैं जहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, जैसे भारत, फिलीपींस।
या क्या काम सौंप सकते हैं इनको?
अरे बहुत कुछ, ईमेल मैनेज करना, रिसर्च करना, अपॉइंटमेंट बुक करना, सोशल मीडिया संभालना, प्रेजेंटेशन बनाना, लिस्ट लंबी है, पर्सनल काम भी, बिजनेस के काम भी। इसे वो लाइफ आउटसोर्सिंग कहते हैं। लाइफ आउटसोर्सिंग, दिलचस्प। लेकिन ऑटोमेशन का शायद सबसे एक्साइटिंग हिस्सा वो म्यूज बनाना है।
हाँ, म्यूज, ये फेरिस का दिया हुआ नाम है एक ऐसे छोटे ऑटोमेटेड बिजनेस के लिए जो आपको पैसिव इनकम दे सके, मतलब ऐसी इनकम जिसके लिए आपको लगातार एक्टिवली काम ना करना पड़े।
पैसिव इनकम, ये तो सबका सपना होता है, ये म्यूज होता किस तरह का है?
अक्सर ये कोई आला उत्पाद, निच प्रोडक्ट होता है, कोई ऐसी चीज जिसकी एक खास मार्केट हो, जिसे ऑनलाइन बेचा जा सके और जिसकी प्रोडक्शन, स्टोरेज, शिपिंग वगैरह को आसानी से आउटसोर्स किया जा सके, जैसे ड्रॉप शिपिंग मॉडल।
अच्छा, मतलब आपको खुद स्टॉक नहीं रखना, ऑर्डर आया, सप्लायर को बताया, उसने भेज दिया।
हाँ, कुछ वैसा ही। लक्ष्य ये है कि ऐसी मशीन बन जाए जो आपके सोते हुए भी आपके लिए पैसा कमाती रहे, आपको रोजाना के मैनेजमेंट में ना फंसना पड़े।
सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? कोई भी बना सकता है म्यूज?
देखिए, आसान तो नहीं है, मेहनत लगती है, लेकिन फेरिस जोर देते हैं कि कोई भी म्यूज आइडिया पर बहुत सारा पैसा और टाइम लगाने से पहले उसे छोटे स्केल पर टेस्ट करना बहुत जरूरी है।
टेस्ट कैसे करें?
छोटे छोटे प्रयोग करके, जैसे गूगल एडवर्ड्स पर विज्ञापन चलाकर देखें कि लोग आपके आइडिया में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या नहीं। एक साधारण सी वेबसाइट बनाकर देखें कि ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं, पहले वैलिडेट करें फिर इन्वेस्ट करें।
समझ गया, मतलब पहले पानी में पैर डालकर देखो ठंडा है या गर्म, फिर कूदो।
बिल्कुल, और जब म्यूज चल पड़े तो अगला लक्ष्य है मैनेजमेंट बाय एब्सेंस, MBA।
मैनेजमेंट बाय एब्सेंस मतलब गैर मौजूदगी में मैनेजमेंट?
हाँ, मतलब आप रोजमर्रा के कामों से पूरी तरह हट जाएं, कस्टमर सर्विस, ऑर्डर फुलफिलमेंट, सब कुछ ऑटोमेटेड हो या आउटसोर्स्ड हो, आप सिस्टम के मालिक हो, उसके मैनेजर नहीं, आप बस ऊपर से निगरानी रखें।
वाह, ये तो अल्टीमेट गोल लगता है, ओनर बनो, मैनेजर नहीं।
हाँ, और यहीं से आता है आखिरी स्टेप L, लिबरेशन, आजादी।
लिबरेशन, जगह के बंधन से मुक्ति।
बिल्कुल, लोकेशन इंडिपेंडेंस। अगर आप नौकरी में हैं तो फेरिस तरीके बताते हैं कि कैसे आप अपने बॉस से रिमोट वर्क के लिए नेगोशिएट कर सकते हैं, अपनी बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी का डेटा दिखाकर उन्हें यकीन दिलाकर कि आप घर से ज्यादा अच्छा काम करेंगे।
और अगर बॉस ना माने तो, रिमोट वर्क ना मिले तो?
तो फिर अगर आपका म्यूज चल पड़ा है, आपको पैसिव इनकम आ रही है, तो नौकरी छोड़ने की हिम्मत जुटाना, एक सुरक्षा जाल तो है ही आपके पास।
हाँ, ये म्यूज एक सेफ्टी नेट की तरह काम कर सकता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, जब नौकरी छूट गई काम ऑटोमेट हो गया तो इतना सारा खाली समय मिलेगा, उसका करेंगे क्या? बोरियत नहीं होगी?
बहुत वैलिड सवाल है, और यहीं पर फेरिस मिनी रिटायरमेंट का आइडिया लाते हैं।
मिनी रिटायरमेंट, ये क्या होता है?
ये पारंपरिक रिटायरमेंट का उल्टा है। पारंपरिक रिटायरमेंट में क्या होता है, आप 60-65 साल तक काम करते हैं और फिर जिंदगी के आखिर में एक लंबा ब्रेक लेते हैं।
हाँ।
फेरिस कहते हैं ये क्यों, क्यों ना जिंदगी भर बीच बीच में छोटे छोटे रिटायरमेंट लिए जाएं, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का ब्रेक
बीच बीच में।
हाँ,
मतलब काम से ब्रेक लेकर।
हाँ, इन मिनी रिटायरमेंट्स में आप वो सब करें जो लोग रिटायर होकर करने का सोचते हैं। दुनिया घूमें, कोई नई भाषा सीखें, कोई शौक पूरा करें, वॉलंटियरिंग करें, फिर वापस आएं, कुछ और काम करें, फिर ब्रेक लें।
अरे, ये तो पूरी सोच ही पलट दी। एक बड़ा रिटायरमेंट अंत में, बजाय जिंदगी भर फैले हुए कई छोटे छोटे रिटायरमेंट।
बिल्कुल, और ये मिनी रिटायरमेंट अक्सर आप जियो आर्बिट्राज से फाइनेंस कर सकते हैं, यानी किसी महंगी जगह कमाकर किसी सस्ती जगह पर जाकर रहना और एंजॉय करना।
लेकिन वो खालीपन वाली बात, उसका क्या?
हाँ, फेरिस इस बारे में चेतावनी भी देते हैं कि अचानक जब बहुत सारा खाली समय मिलता है तो कई बार समझ नहीं आता कि क्या करें। एक तरह की उद्देश्यहीनता, एक खालीपन आ सकता है, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम।
तो उसका क्या समाधान है?
समाधान है कि इस नई मिली आज़ादी का इस्तेमाल सार्थक कामों में करें। आलसी बन के पड़े रहने के लिए नहीं है ये आज़ादी, ये है सीखने के लिए, सेवा करने के लिए, एडवेंचर के लिए, उन चीज़ों को करने के लिए जो आपको सच में उत्साहित करती हैं, एक भरपूर जिंदगी जीने के लिए अपनी शर्तों पर।
समझ गया, तो लक्ष्य सिर्फ खाली बैठना नहीं बल्कि उस खाली समय को मीनिंगफुल तरीके से भरना है।
एग्जैक्टली, तो ये था डील फ्रेमवर्क का पूरा सार, DEAL।
काफी कुछ है इसमें सोचने और करने के लिए। अगर हम इसके मुख्य संदेशों को दोबारा देखें तो पहला तो मेरे हिसाब से यही है कि दौलत की परिभाषा बदलनी होगी।
हाँ बिल्कुल, असली दौलत पैसा नहीं बल्कि समय और घूमने फिरने की आज़ादी है, वो रिलेटिव इनकम वाली बात।
दूसरा, ये जो पारंपरिक तरीका है ना कि 40-45 साल रगड़कर नौकरी करो फिर रिटायर होकर जिंदगी जियो, ये मॉडल अब शायद उतना भरोसेमंद नहीं रहा, पुराना हो गया है, जोखिम भरा भी है।
जोखिम भरा कैसे?
अरे, क्या गारंटी है कि हम 60-65 साल की उम्र में उतने ही स्वस्थ और ऊर्जावान रहेंगे कि अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकें? क्यों ना जिंदगी का मजा अभी लिया जाए जब हम जवान हैं?
ये बात तो है, हालांकि ये सोचना होगा कि भारतीय संदर्भ में ये कितना प्रैक्टिकल है, जहां जॉब सिक्योरिटी को इतनी अहमियत दी जाती है, परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं।
हाँ, वो चैलेंज तो है, लेकिन सोचने की दिशा तो मिलती है।
तीसरा संदेश क्या कहेंगी आप?
तीसरा, वो 80-20 नियम, प्रभावशीलता इफेक्टिवनेस दक्षता एफिशिएंसी से ज्यादा जरूरी है। मतलब सिर्फ काम करते रहना काफी नहीं, सही काम करना जरूरी है, उन 20% चीजों पर फोकस करना।
चौथा,
ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग, ये सिर्फ बिजनेस चलाने के टूल नहीं है, ये हमारी व्यक्तिगत आजादी के साधन बन सकते हैं, हमें उबाऊ रूटीन कामों से मुक्ति दिला सकते हैं ताकि हम ज्यादा जरूरी चीजों पर ध्यान दे सकें।
ये पारंपरिक वर्क एथिक को चैलेंज करता है कि हर काम खुद ही करना चाहिए।
पांचवां संदेश मेरे ख्याल से डर के बारे में है।
हाँ, डर हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है, लेकिन उसे अनदेखा करने की बजाय फियर सेटिंग जैसे तरीकों से उसे समझा जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। डर असल में एक कंपास की तरह है जो हमें दिखाता है कि हमें किस तरफ बढ़ने की जरूरत है।
जिस चीज से डर लगता है अक्सर वही करनी जरूरी होती है।
बिल्कुल।
और छठा संदेश, वो मिनी रिटायरमेंट वाला आइडिया, जिंदगी को अनुभवों से भरना, ना कि सिर्फ पैसे जमा करते रहना बुढ़ापे के लिए।
हाँ, हालांकि इसकी व्यावहारिकता पर सोचना पड़ेगा जैसा आपने कहा, खासकर हमारी पारिवारिक और सामाजिक संरचनाओं में, पर आइडिया बहुत पावरफुल है।
इस किताब में कुछ कोट्स भी बहुत कमाल के हैं जो दिमाग में बैठ जाते हैं।
हाँ, जिक्र करते हैं कुछ का। वो न्यू रिच वाली परिभाषा मुझे बहुत अच्छी लगी।
कौन सी?
न्यू रिच वे है जो स्थगित जीवन योजना को त्याग देते हैं और वर्तमान में न्यू रिच की मुद्रा यानी समय और गतिशीलता का उपयोग करके लग्जरी जीवन शैली बनाते हैं। ये पूरी सोच बदल देती है। सही बात है, ये अभी जीने पर जोर देती है। और वो व्यस्तता वाली लाइन,
हाँ,
व्यस्त रहना आलस्य का एक रूप है, आलसी सोच और अंधाधुंध कार्रवाई, ये तो आज के हसल कल्चर पर सीधा कटाक्ष है।
बिल्कुल।
एक और जो मुझे बहुत पसंद है, जिस काम को करने से हम सबसे ज्यादा डरते हैं अक्सर वही काम होता है जिसे हमें सबसे ज्यादा करने की जरूरत होती है।
हाँ।
मतलब डर हमें रास्ता दिखा रहा है।
हाँ।
ये हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कहता है और वो पार्किंसंस नियम वाला कोड भी याद रखने लायक है
कि काम दिए गए समय के हिसाब से फैल जाता है।
हाँ, एक कार्य कथित महत्व और जटिलता में उसे आवंटित समय के अनुपात में फूलेगा। सिंपल लेकिन गहरा, छोटी डेडलाइन रखो।
और एक और बात जो फेरिस क्लियर करते हैं कि इस सब का लक्ष्य सिर्फ आराम करना या आलसी होना नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य है स्वतंत्रता और उद्देश्य का जीवन बनाना।
जी।
अपने समय का उपयोग उन चीजों को करने के लिए करना जो आपको सच में उत्साहित करती हैं, जो आपको मीनिंग देती हैं।
तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सब असल जिंदगी में किया जा सकता है? मतलब हम जैसे आम लोग इसे कैसे लागू कर सकते हैं?
हाँ, ये सवाल जरूरी है। और फेरिस कहते हैं कि आपको एकदम से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं।
जैसे?
जैसे आप अपने काम पर 80-20 का विश्लेषण करके देख सकते हैं, कौन से काम हैं जो सबसे ज्यादा नतीजे दे रहे हैं, या कौन से क्लाइंट हैं जो 80% रेवेन्यू ला रहे हैं, या कौन से 20% काम हैं जो 80% सिरदर्द दे रहे हैं। पहले ये पहचानिए।
ये तो किया जा सकता है। और
टास्क बैचिंग ट्राई कर सकते हैं, जैसे तय करें कि आप दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल चेक करेंगे, सुबह और शाम, बीच बीच में नहीं।
ओके, इससे फोकस बढ़ेगा शायद।
या फिर एक हफ्ते के लिए लो इन्फॉर्मेशन डाइट आजमा कर देखें, न्यूज सोशल मीडिया से दूरी बनाकर देखें, कैसा महसूस होता है, कितना टाइम फ्री होता है।
यह थोड़ा मुश्किल होगा पर ट्राई किया जा सकता है।
किसी छोटे से काम के लिए जैसे कोई रिसर्च या बुकिंग, एक बार किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करके देखें, सिर्फ ये समझने के लिए कि आउटसोर्सिंग काम कैसे करती है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इसके लिए।
और व्यक्तिगत जीवन में
कोई बड़ा फैसला लेना है तो उससे पहले बैठकर फियर सेटिंग वाला अभ्यास करें, अपने डर लिखें, उन्हें समझें।
हाँ, ये बहुत काम आ सकता है।
या फिर अगली छुट्टी प्लान करते समय सोचें कि क्या उसे थोड़ा लंबा करके मिनी रिटायरमेंट जैसा बनाया जा सकता है। शायद देश में ही कहीं कुछ हफ्तों के लिए चले जाएं, कुछ नया सीखें।
छोटे कदम लेकिन शायद सोच बदलने के लिए काफी हों।
बिल्कुल, जरूरी नहीं कि हर कोई कल से ही 4 घंटे काम करने लगे, वो शायद हेडलाइन ज्यादा है, लेकिन इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा उतार कर भी हम ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा आजादी और ज्यादा सार्थकता ला सकते हैं।
तो इस पूरी बातचीत से अगर मुझे एक चीज चुननी हो जो मेरे साथ रहेगी तो वो शायद सापेक्ष आय वाला कॉन्सेप्ट है। इसने वाकई सोचने का तरीका बदल दिया कि अमीर होने का मतलब क्या है। पैसा जरूरी है पर समय शायद उससे भी ज्यादा कीमती है।
हाँ, समय। और मेरे लिए शायद सबसे ज्यादा असरदार वो फियर सेटिंग और मिनी रिटायरमेंट का आइडिया था। डर को हथियार बनाना और जिंदगी को टुकड़ों में एंजॉय करना, ये पारंपरिक सोच से बहुत अलग है पर बहुत आकर्षक है।
और ये पूरी किताब का जो एसेंस है कि आप अपने जिंदगी के ड्राइवर बन सकते हैं, उसे डिजाइन कर सकते हैं, ये बहुत एम्पावरिंग है।
बिल्कुल, ये किताब सिर्फ सपने नहीं दिखाती, ये उन्हें पूरा करने का ब्लूप्रिंट देती है। ये कहती है, इंतजार मत करो, जिंदगी अभी है, इसे जियो।
तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा टिमोथी फेरिस की क्रांतिकारी किताब द 4-आवर वर्क वीक पर। उम्मीद है इसने आपको भी सोचने पे मजबूर किया होगा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकेथ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।